एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र AI की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है।
नमस्ते, मैं हूँ मेजबान दो।
और मैं हूँ मेजबान एक। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो दिखने में तो छोटी है पर है बड़ी गहरी। एडवर्ड क्रेग की फिलॉसफी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये किताब मतलब मुझे लगता है आज के समय के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है।
क्यों, ऐसा क्यों लगता है?
क्योंकि देखिए ना, हम सब हर तरफ से क्या कहते हैं, जानकारी, राय, दावे, इन सब से घिरे हुए हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई हम सोचें कैसे, क्या माने और क्यों माने।
बिल्कुल सही। और क्रेग हमें यही दिखाते हैं कि दर्शन यानी फिलॉसफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करते हैं या पुरानी धूल भरी किताबों में बंद है।
हाँ, वो इसे एक जीने का तरीका बताते हैं।
हाँ, जीने का तरीका, अपनी समझ को साफ करने का एक औजार। एक तरह से ये हमें अपनी विश्वदृष्टि मतलब दुनिया को देखने का हमारा अपना नजरिया उसे बनाने में और उसे लगातार बेहतर करने में मदद करता है।
हाँ बिल्कुल,
और चलिए इसी सोच की यात्रा पे निकलते हैं।
हाँ बिल्कुल। और इस यात्रा पर हमारे गाइड हैं एडवर्ड क्रेग, जिनका जन्म 1940 में हुआ और 2023 में उनका देहांत हुआ। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रिटिश दार्शनिक थे।
हाँ, वो तो थे ही। उनका एकेडमिक कद काफी ऊंचा था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नाइटब्रिज प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी, ये दुनिया के सबसे सम्मानित एकेडमिक पदों में से एक माना जाता है।
लेकिन शायद उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है, जिसके बारे में कम लोग जानते होंगे, कि क्रेग 10 खंडों वाले विशाल रूटले एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी के जनरल एडिटर थे।
10 वॉल्यूम, सोचकर ही लगता है कितना काम होगा।
हाँ बिल्कुल। और इस काम ने उन्हें मतलब दुनिया भर की फिलॉसफी को, अलग अलग कल्चर, अलग अलग समय के विचारों को एक बहुत ही अनोखे और शायद गहरे नजरिए से देखने का मौका दिया।
और शायद इसी अनुभव ने उन्हें ये छोटी सी किताब लिखने के लिए एक खास, एक अलग तरह की योग्यता दी। वो फिलॉसफी को सिर्फ इतिहास की तरह नहीं देखते कि पहले कौन आया फिर कौन आया।
सही।
वो इस बात पर जोर देते हैं कि फिलॉसफी असल में करती क्या है, इसका मकसद क्या है। और उनका अंदाज भी ऐसा है कि मुश्किल विचारों को भी बहुत साफ और हाँ, व्यवहारिक तरीके से समझाते हैं।
तो फिर ये किताब आखिर है किस बारे में?
देखिए, क्रेग का जो मुख्य लक्ष्य है वो फिलॉसफी से जुड़े उस डर या एक तरह के रहस्य को दूर करना है जो अक्सर लोगों को लगता है।
हाँ, लगता है कि यह बहुत मुश्किल चीज है, हमारे बस की नहीं।
बिल्कुल। वो दिखाते हैं कि भाई, सोचना, सवाल पूछना, अपने विश्वासों को परखना, ये सब बहुत स्वाभाविक मानवीय गतिविधियां हैं। मतलब हम सब ये करते ही हैं और यही फिलॉसफी की जड़ है।
किताब का सार अगर देखें तो यह है कि हम सब इंसान हैं और दुनिया को समझना चाहते हैं, उसमें अपनी जगह खोजना चाहते हैं।
हाँ, इसके लिए हम जाने अनजाने एक विश्व दृष्टि या वर्ल्ड व्यू बनाते हैं। मतलब दुनिया कैसे काम करती है, क्या सही है, क्या गलत है, इस पर हमारे अपने कुछ विचार होते हैं। क्रेग कहते हैं कि फिलॉसफी इसी विश्व दृष्टि को सचेत रूप से सोच समझकर बनाने और जांचने का अभ्यास है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये काम कोई भारी भरकम परिभाषाएं रटाकर नहीं करते।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो हमें सीधे दार्शनिक सवालों और दुविधाओं के बीच ले जाते हैं, जैसे वो हमें प्लेटो के एक डायलॉग के जरिए नैतिकता की गुत्थी सुलझाने के लिए उकसाते हैं, या फिर डेकार्त के साथ शक करने की हिम्मत करने को कहते हैं।
हाँ, ये किताब जवाब देने से ज्यादा सवाल पूछना सिखाती है ना?
बिल्कुल।
ये फिलॉसफी को एक विषय की तरह नहीं बल्कि एक क्रिया या अभ्यास की तरह दिखाती है। चलिए देखते हैं कि अभ्यास असल में दिखता कैसा है।
अच्छा, तो क्रेग शुरुआत करते हैं एक बड़े बुनियादी सवाल से। हम अपने विश्वासों को, अपनी मान्यताओं को सही कैसे ठहराएं? इसके लिए वो हमें ले चलते हैं प्राचीन एथेंस, सुकरात के पास, प्लेटो के संवाद क्रेटो के जरिए।
हाँ, क्रेटो।
तो कहानी ये है कि सुकरात जेल में है, उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से मौत की सजा मिली है। उनका दोस्त है क्रेटो, वो आता है और उन्हें भागने का रास्ता सुझाता है। पैसे हैं, गार्ड्स को रिश्वत दी जा सकती है, सब इंतजाम है।
ये तो जबरदस्त नैतिक दुविधा है। एक तरफ तो जान बचाने की इच्छा है जो स्वाभाविक है, फिर दोस्तों और परिवार का दबाव भी है, लोग क्या कहेंगे इसका डर भी है।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ है सुकरात के अपने सिद्धांत। तो सुकरात क्या चुनते हैं,
क्या करते हैं वो?
सुकरात भावनाओं को, लोगों की राय को, इन सबको साइड में रख देते हैं। वो कहते हैं कि फैसला तर्क पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने पूरी जिंदगी एथेंस के कानूनों के तहत बिताई है, तो क्या अब जब उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें कानून तोड़ देना चाहिए? उनका तर्क है कि नहीं, ऐसा करने से वो उस समाज को ही नुकसान पहुंचाएंगे जिसका वो हिस्सा हैं। ये दिखाता है कि दार्शनिक निर्नैतिकता सिर्फ महसूस करने पर नहीं बल्कि तर्कसंगत वजहों पर, सिद्धांतों पर टिकी होती है।
ये आज भी कितना कितना प्रासंगिक है ना?
बहुत ज्यादा।
कितनी बार हम अपने फैसले सिर्फ इस आधार पर ले लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हाँ, या उस पल हमें कैसा महसूस हो रहा है, बजाय ये सोचने के कि तर्कसंगत रूप से सही क्या है।
बिल्कुल। सुकरात हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने की चुनौती देते हैं, लेकिन अगर हम तर्क पर इतना जोर दे रहे हैं तो सवाल उठता है कि हम जानते कैसे हैं कि सच क्या है? क्या हम अपनी इंद्रियों पर, अपनी आंखों, कानों पर भरोसा कर सकते हैं? यहीं पर क्रेग हमें रेने डेकार्त के पास ले जाते हैं।
ओ डेकार्त, उनका तरीका तो और भी, क्या कहूँ, क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, चलो हर उस चीज पर शक करते हैं जिस पर जरा सा भी शक किया जा सके।
हाँ, मतलब सब कुछ।
कोई बुरी ताकत, कोई दुष्ट राक्षस हमें हर बात पे धोखा दे रहा हो, ये सुनने में पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है।
हाँ, थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, लेकिन डेकार्त का मकसद कोई पागलपन फैलाना नहीं था। वो ज्ञान की एक ऐसी पक्की ठोस नींव खोजना चाहते थे जिस पर कोई शक न कर सके, और इस गहरे शक के समुन्दर में जब सब कुछ डूब रहा था, उन्हें एक तिनका मिला,
और वो था
कॉजितो एर्गो सुम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं शक कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो कम से कम मेरा यानी सोचने वाले का अस्तित्व तो पक्का है, इस पर तो शक नहीं किया जा सकता।
अच्छा, तो डेकार्त ने शक को ही एक औजार की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो निश्चितता तक पहुंच सके। ये हमें सिखाता है कि विश्वास करने से पहले ये पूछना कितना जरूरी है कि क्या मेरे इस विश्वास का कोई ठोस आधार है।
बिल्कुल। और ये सिर्फ पुरानी फिलॉसफी नहीं है, आज के फेक न्यूज और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में ये एक बहुत जरूरी स्किल है ना?
हाँ, बहुत ज्यादा।
लेकिन यहाँ एक और सवाल खड़ा हो जाता है। डेकार्त ने कहा, मैं यानी सोचने वाला मन तो है, पर यह भौतिक शरीर से अलग है।
हाँ, मन और शरीर अलग अलग हैं।
इससे वो मशहूर माइंड बॉडी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अगर मन अभौतिक है और शरीर भौतिक, तो ये दोनों जुड़ते कैसे हैं? एक मानसिक फैसला जैसे हाथ उठाने का सोचना, एक भौतिक क्रिया हाथ उठाना का कारण कैसे बनता है?
ये तो वाकई सोचने वाली बात है।
और यहीं से तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स के और गहरे सवाल शुरू होते हैं। वास्तविकता आखिर है क्या? क्या सिर्फ पदार्थ ही सच है, मटेरियलिज्म, या सिर्फ विचार ही सच है, आइडियलिज्म, या दोनों है?
और इसी से जुड़ा हुआ वो सवाल है कि मैं कौन हूँ? क्या मैं मेरा शरीर हूँ? तो शरीर तो बदलता रहता है। क्या मैं मेरी यादें हूँ? यादें भी बदलती हैं, धुंधली होती हैं। क्या मैं मेरी चेतना हूँ? तो फिर नींद में क्या होता है? समय के साथ बदलते शरीर और विचारों के बावजूद क्या चीज मुझे मैं बनाए रखती है? फिलॉसफी हमें इन बड़े बुनियादी सवालों से जूझने के लिए प्रेरित करती है।
हाँ, और इन सवालों से निपटने के लिए फिलॉसफी हमें कुछ औजार भी देती है, जैसे तर्क करना सीखना, साफ परिभाषाएं देना, भ्रांतियों यानी फैलेसीज को पहचानना। क्रेग संक्षेप में तर्कवाद यानी रैशनलिज्म यानी ज्ञान मुख्य रूप से तर्क से आता है, जैसे डेकार्त मानते थे, और अनुभववाद यानी एम्पिरिसिज्म यानी ज्ञान मुख्य रूप से अनुभव हमारी इंद्रियों से आता है, जैसे लॉक और ह्यूम मानते थे। इनके बीच के तनाव को भी छूते हैं।
अच्छा, तो ये दिखाता है कि दुनिया को समझने के अलग अलग शुरुआती बिंदु हो सकते हैं।
हाँ, बिल्कुल। और एक और बड़ा मुद्दा क्रेग उठाते हैं, वो है स्वतंत्र इच्छा बनाम नियत तत्ववाद,
फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म।
हाँ
हाँ, ये तो हमेशा से बहस का मुद्दा रहा है।
क्या हम सच में अपने फैसले खुद लेते हैं? क्या हमारे पास चुनने की आजादी है, या हमारे सारे काम, सारे विचार पहले से तय कारणों का नतीजा है?
और अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर क्या हम अपने कामों के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार हैं? तारीफ या सजा का क्या मतलब रह जाता है?
बिल्कुल। ये ऐसे सवाल हैं जिनके कोई आसान सेट जवाब नहीं है, लेकिन इन पर सोचना हमें अपनी जिम्मेदारियों और अपने चुनावों के बारे में शायद ज्यादा जागरूक बनाता है।
क्रेग हमें ये भी दिखाते हैं कि फिलॉसफी सिर्फ दुनिया को समझने का ढांचा ही नहीं बनाती, बल्कि मौजूदा ढांचों पर स्थापित मान्यताओं पर सवाल भी उठाती है।
हाँ, उसका एक क्रिटिकल रोल भी है, जैसे डेविड ह्यूम ने धार्मिक चमत्कारों पर बड़े तर्कसंगत सवाल उठाए, या फिर फ्रेडरिक नीचे ने तो पारंपरिक नैतिकता की जड़ों को ही खोद डाला।
ह्यूम का तर्क तो बड़ा सीधा और असरदार था, है ना, कि किसी चमत्कार की गवाही पर यकीन करने से पहले ये सोचो कि क्या गवाह के गलत होने की संभावना उस चमत्कार के वाकई होने से ज्यादा है। अक्सर जवाब हाँ होता है।
बिल्कुल, ये आलोचनात्मक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है।
और नीत्शे, वो तो और भी आगे गए।
हाँ, नीचे ने तो यहां तक कह दिया कि जिसे हम सदियों से अच्छाई या बुराई, पुण्य या पाप मानते आए हैं, वो शायद ईश्वर ने नहीं बनाया, बल्कि इंसानों ने ही अपनी जरूरतों, अपनी कमजोरियों या ताकत के हिसाब से गढ़ लिया है। उन्होंने तो सभी मूल्यों के पुनर्मूल्यांकन की बात की।
ये विचार यकीनन परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि फिलॉसफी हमें आंख मूंद कर कुछ भी मान लेने से रोकती है। ये हमें बौद्धिक रूप से सोचने के मामले में आजाद होने में मदद करती है।
तो भाई, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये फिलॉसफी आखिर हमारे किस काम की है? क्या लगता है?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ आई वो है एक सचेत विश्व दृष्टि का निर्माण। मतलब हम सब किसी न किसी नजरिए से दुनिया को देखते ही हैं, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। फिलॉसफी हमें उस नजरिए को ठीक से जांचने, उसमें जो कमजोरियां या विरोधाभास हैं उन्हें देखने और सुधारने और उसे ज्यादा मजबूत बनाने में मदद करती है। जैसे अपने जीवन का एक नक्शा बनाना और उसे लगातार अपडेट करते रहना।
हाँ, ये अच्छा एनालॉजी है। और दूसरा, जो आपने पहले भी कहा, आलोचनात्मक सोच का विकास, डेकार्त की तरह शक करना सीखना, न केवल फिलॉसफी की पुरानी किताबों पर बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो जानकारी हमें मिल रही है उस पर भी।
हाँ, कोई खबर हो, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो, कोई विज्ञापन, कोई नेता का भाषण, रुक कर पूछना, स्रोत क्या है, सबूत क्या है, क्या इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है, ये हमें गुमराह होने से बचाता है।
बिल्कुल।
तीसरा, मुझे लगता है, नैतिक स्पष्टता। सुकरात की तरह जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो सिर्फ भावनाओं या सामाजिक दबाव में बहने के बजाय तर्क और सिद्धांतों के आधार पर सोचना, कांट की तरह पूछना, अगर सब लोग मेरी तरह करें तो दुनिया कैसी होगी। इससे हमारे नैतिक निर्णय ज्यादा, क्या कहते हैं, सुसंगत बनते हैं।
हाँ, कोहेरेंट।
और चौथा, जो आजकल बहुत जरूरी है, वो है बौद्धिक विनम्रता और बेहतर संवाद। जब हम समझते हैं कि मुश्किल सवालों के कई पहलू हो सकते हैं और अलग अलग समझदार लोग भी तर्कसंगत रूप से अलग अलग नतीजों पर पहुंच सकते हैं, तो हम अपने ही विचारों पर कम अड़ते हैं।
सही बात है।
हम दूसरों को सुनने और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं, भले ही हम उनसे सहमत ना हों। इससे बहस झगड़े में नहीं बदलती, बल्कि विचारों का एक स्वस्थ आदान प्रदान बन जाती है।
हाँ, और ये हमें अपनी बात को ज्यादा स्पष्ट और तर्कपूर्ण ढंग से रखना भी सिखाता है, जो कि बहुत जरूरी है।
अच्छा, इस किताब में वैसे तो सीधे सीधे कोट करने लायक वाक्य शायद कम हो, क्योंकि क्रेग विचारों को समझाने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज हैं जो दिमाग में रह जाते हैं।
हाँ, जैसे पहला, वो सुकरात वाला विचार, नैतिकता का आधार भावनाएं या भीड़ की राय नहीं, बल्कि परखा हुआ तर्कसंगत सिद्धांत होना चाहिए।
बिल्कुल। दूसरा, डेकार्त, वो क्रांतिकारी कदम, ज्ञान की पक्की नींव खोजने के लिए पहले हर उस चीज पर शक करो जिस पर शक किया जा सके। मतलब शक करना विनाशकारी नहीं, बल्कि ज्ञान तक पहुंचने का एक रचनात्मक तरीका हो सकता है।
तीसरा, ह्यूम की वो चुनौती, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई बात सुनने में अच्छी लगती है या बहुत पुरानी है या बहुत लोग मानते हैं, उसे सच मान लेना जरूरी नहीं।
हाँ, सबूत मांगो। और चौथा, जो थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कांट का वो सिद्धांत कि हमें केवल उन सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए जिन्हें हम चाहें कि वो एक सार्वभौमिक नियम बन जाए, ये हमें अपने कामों के व्यापक असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
तो इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? देखिए, बहुत आसान तरीकों से हो सकता है। जब भी आप कोई बड़ी खबर पढ़ें या सुनें, खासकर जो बहुत सनसनीखेज लगे, तो एक पल रुककर सोचें, क्या ये स्रोत भरोसेमंद हैं? क्या दूसरे स्रोत भी यही कह रहे हैं? क्या इसमें तथ्यों से ज्यादा भावनात्मक अपील है? ये हुआ डेकार्ते वाला शक लागू करना।
बिल्कुल। या मान लीजिए कोई मुश्किल फैसला लेना है, जैसे करियर बदलना है या नहीं, या किसी रिश्तेदार के साथ कोई विवाद है, तो सिर्फ डर या गुस्से या इच्छा के आधार पर फैसला ना करें। सोचें इसके लंबे समय में क्या परिणाम होंगे, कौन से सिद्धांत यहाँ मायने रखते हैं, क्या ये फैसला मेरे अपने मूल्यों के अनुरूप है। ये सुकरात वाला तरीका हुआ।
और जब किसी से किसी मुद्दे पर असहमति हो, मान लीजिए सोशल मीडिया पे ही, तो तुरंत पर्सनल अटैक करने या ब्लॉक करने के बजाय एक सेकंड के लिए कोशिश करें समझने की कि सामने वाला ऐसा क्यों सोच रहा है, क्या उनके तर्क में कोई भी दम है, भले ही थोड़ा सा, क्या मैं अपनी बात शांति से बिना गुस्सा हुए रख सकता हूं। ये हुई बौद्धिक विनम्रता और बेहतर संवाद का अभ्यास।
मुझे लगता है इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि फिलॉसफी कोई दूर की एकेडमिक चीज नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक सक्रिय प्रैक्टिकल तरीका है। ये हर उस इंसान के लिए है जो सिर्फ जीना नहीं बल्कि सोच समझकर एक परीक्षित जीवन, एग्जामिन्ड लाइफ, जैसा सुकरात कहते थे, वो जीना चाहता है।
हाँ, ये एक तरह का मानसिक जिम है जो हमारी सोचने की मांसपेशियों को मजबूत करता है।
बिल्कुल।
और इसकी खूबसूरती शायद इसी में है कि ये हमें तैयारशुदा पक्के जवाबों की लिस्ट नहीं देती, बल्कि ये सही सवाल पूछना सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि मुझे नहीं पता कहना भी ठीक है, जब तक हम जानने की कोशिश करते रहें। ये हमें दूसरों की राय और परंपराओं के अंधे बोझ से आज़ाद करती है, ताकि हम अपनी सोच खुद बना सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, बौद्धिक रूप से।
हाँ, बौद्धिक स्वायत्तता।
हाँ, इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी। शायद असली सवाल ये नहीं है कि फिलॉसफी क्या कर सकती है, बल्कि ये है कि हम इन औजारों का इस्तेमाल करने के लिए कितने तैयार हैं।
सच में, ये सोचना कि अगर हम सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत, जैसे कांट का वो सार्वभौमिक नियम वाला विचार, को अपनी अगली बड़ी पसंद पर या किसी छोटे से रोज के फैसले पर भी लागू करें, तो क्या नतीजा अलग होगा, ये अपने आप में सोचने लायक बात है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।